अनिवार्य ओपनिंग नरेशन। अनिवार्य ओपनिंग नरेशन एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं वियतथान गोयन के पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यास द सिंपथाइजर की।
हाँ, 2015 में आई थी ये किताब और आते ही मतलब दुनिया भर में काफी चर्चा हुई थी इसकी।
बिल्कुल, और सही भी है, ये सिर्फ एक आप कह सकते हैं जासूसी कहानी भर नहीं है।
जी नहीं, बल्कि पहचान, वफादारी और युद्ध की छाया में जीने का जो मतलब होता है ना, उस पर एक गहरा बेचैन करने वाला चिंतन है इसमें।
हाँ, और लेखक वियतथान गोयन वो खुद वियतनाम युद्ध के बाद एक शरणार्थी के तौर पर अमेरिका आए थे।
जी, तो उनका अपना अनुभव भी वो इस उपन्यास की रग रग में मतलब महसूस होता है।
उन्होंने कहा भी था कि वो उन लोगों के लिए लिखना चाहते हैं जिनकी आवाजें अक्सर अनसुनी रह जाती हैं,
दब जाती हैं। बिल्कुल, और द सिंपथाइजर वही करता है, मतलब ये वियतनाम युद्ध को एक वियतनामी नजरिए से दिखाता है,
वो नजरिया जो अक्सर पश्चिमी कहानियों में खो जाता है। तो आज हम इसी उपन्यास की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल, इसके जो मुख्य किरदार हैं उनके अंदर का जो द्वंद्व है,
हाँ, वो जो हमेशा दो पार्टों के बीच फंसा महसूस करता है, उसको समझेंगे और देखेंगे कि ये कहानी हमें युद्ध, स्मृति और सच कहने की राजनीति के बारे में क्या सिखाती है।
तो कहानी की शुरुआत ही जैसा आपने कहा थोड़ी अलग है।
जी,
ये एक कबूलनामे की शक्ल में है।
अच्छा, एक कन्फेशन।
हाँ, जिसे हमारा जो हीरो है, अनाम है वो, हम उसे कप्तान कह लेते हैं, वो लिख रहा है।
कहाँ लिख रहा है?
वियतनाम के एक री एजुकेशन कैंप में।
ओ।
और ये कप्तान भी मतलब कोई आम आदमी नहीं है, वो एक फ्रांसीसी पादरी और एक गरीब वियतनामी माँ का बेटा है, नाजायज बेटा जैसा वो खुद कहता है, दो खून और दो मन वाला इंसान।
अच्छा, यहीं से वो उपन्यास का केंद्रीय तनाव शुरू होता है,
ये दो मन होना।
बिल्कुल, यही है उपन्यास का केंद्रीय संघर्ष।
अमेरिका में पढ़ा लिखा, मतलब पश्चिमी संस्कृति से वाकिफ,
हाँ,
पर अंदर से कट्टर कम्युनिस्ट जासूस,
हाँ, और हर चीज को दोनों तरफ से देख सकता है, दोनों पक्षों से सहानुभूति रख सकता है।
यस,
इसीलिए तो नाम है द सिंपथाइजर।
लेकिन ये सहानुभूति, ये ताकत है या कमजोरी?
मतलब क्या ये मुमकिन है कि कोई लगातार ऐसी दोहरी जिंदगी जिए और अपनी इंसानियत भी बचाए रखे?
यही मूल सवाल उपन्यास उठाता है। तो कहानी हमें ले जाती है अप्रैल 1975, साइगोन का पतन करीब है।
अमेरिकी जा रहे हैं, दक्षिण वियतनामी सरकार ढह रही है।
जी, और हमारा कप्तान जो है तो दक्षिण वियतनामी सेना में ऊंचे पद पर,
हाँ,
पर असल में वो गुप्त रूप से उत्तरी वियतनाम के लिए जासूसी कर रहा है।
तो उसका मिशन क्या है उस वक्त?
उसका काम है अपने बॉस, एक भ्रष्ट दक्षिण वियतनामी जनरल के साथ अमेरिका भाग जाना और फिर वहां निर्वासन में जो वियतनामी समुदाय बसेगा उनके बीच रहकर जासूसी करना।
ओहो, सोचिए जरा उस स्थिति को, चारों तरफ अफरा तफरी और उसे एक साथ कई भूमिकाएं निभानी हैं।
बिल्कुल, जनरल का विश्वास पात्र भी बने रहना है और अपने कम्युनिस्ट आकाओं को खबरें भी पहुंचानी है।
और यही उसका वो द्वंद्व खुलकर सामने आता होगा। वो क्रांति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन उसके दोस्त जैसे उसका जिगरियार बॉन।
हाँ, और यहाँ तक कि जनरल भी तकनीकी रूप से तो दुश्मन खेमे में है।
और मुख्य पात्र कौन कौन है?
देखिए, एक तो कप्तान है ही, अनाम, जटिल, विरोधाभासी, ये दो मन वाला
जो सत्ता और पाखंड को बहुत बारीकी से देखता है।
जी, फिर जनरल है जो हारे हुए शासन का प्रतीक है, अमेरिका में शक्तिहीन, लॉस एंजलिस में शराब की दुकान चलाता है
पर वापसी का सपना देखता है।
हाँ, और प्रतिक्रांति की गुप्त योजनाएं बनाता है। कप्तान उसे दया, अवमानना और अजीब से स्नेह, इन सब के मिले जुले भाव से देखता है।
और बॉन कप्तान का दोस्त?
हाँ, बॉन कट्टर कम्युनिस्ट विरोधी, साइगोन से भागते समय उसकी पत्नी और बच्चे की मौत हो जाती है।
ओह,
वो प्रतिशोध की आग में जलता हुआ एक तरह का हत्यारा बन जाता है। उसमें शुद्ध भावना है, अटूट वफादारी है और वो कप्तान पर अटूट विश्वास रखता है, जो कहानी में और त्रासदी जोड़ता है।
और चौथा मान?
मान कप्तान का बचपन का दोस्त, वैचारिक गुरु और कम्युनिस्ट हैंडलर, वो क्रांति के ठंडे गणनात्मक तर्क का प्रतीक है। ज्यादातर उपन्यास में वो एक अमूर्त आदर्शवादी जैसा लगता है लेकिन अंत में उसका असली रूप सामने आता है।
तो साइगोन में पतन और पलायन, भाग एक।
जी, साइगोन में अराजकता है, भागने की लिस्ट बन रही है, कप्तान अपनी दोहरी भूमिका निभा रहा है, मान उसे एक आखिरी मिशन देता है, एक संदिग्ध डबल एजेंट को खत्म करना। इसके लिए वो बॉन का इस्तेमाल करता है।
और फिर एयरपोर्ट पर वो भयानक दृश्य।
हाँ, एयरपोर्ट पर भगदड़, गोलीबारी, बॉन के परिवार की मौत, कप्तान, जनरल और वो तबाह हो चुका बॉन किसी तरह अमेरिका पहुंचते हैं।
ये सिर्फ एक देश से दूसरे देश जाना नहीं है, ये अपनी जड़ों से उखड़ जाना है।
सही कहा। जैसा उपन्यास में एक जगह है, यही होता है शरणार्थी होने का मतलब।
और फिर भाग दो, अमेरिका में निर्वासन, लॉस एंजेलिस।
हाँ, सांस्कृतिक टकराव है, जासूसी जारी है, जनरल की वापसी की योजनाएं चल रही हैं।
कप्तान वहाँ यूनिवर्सिटी में भी जाता है।
जी, और सुश्री सोफिया मोरी के साथ उसका वो जटिल रिश्ता पनपता है, और साथ ही अमेरिकी जीवन पर उसके व्यंग्यात्मक कॉमेंट्स चलते रहते हैं, नस्लवाद, उपभोक्तावाद।
निर्वासन में समुदाय की मानसिकता कैसी होती है? व्यामो, अतीत में जीना।
बिल्कुल, प्रतिक्रांति का भ्रम पालना। कप्तान इन सब चीजों को बहुत बारीकी से देखता और नोट करता है।
फिर आता है भाग थ्री, हॉलीवुड वाला।
हाँ, हॉलीवुड इंटरल्यूड। वियतनाम युद्ध पर एक फिल्म बन रही है, द हैमलेट। कप्तान को सलाहकार रखा गया है।
लेकिन निर्देशक, वो ऑटेर, वो तो अहंकारी है।
जी, प्रामाणिकता का ढोंग करता है, पर वियतनामी दृष्टिकोण की परवाह नहीं करता। कप्तान के सुझावों को नजरअंदाज कर देता है।
ये अमेरिकी सांस्कृतिक साम्राज्यवाद और ओरिएंटलिज्म की तीखी आलोचना है ना?
बिल्कुल। पश्चिम कैसे पूरब को रोमांटिक या पिछड़ा दिखाता है, उनकी आवाज को नजरअंदाज करता है। कहानी कहने की राजनीति।
जैसा कप्तान सोचता है, वह सिर्फ यही दिखा सकते थे कि वियतनाम में एक अमेरिकी होना कैसा था।
हाँ, और इसका क्लाइमैक्स क्या होता है? एक सीन में असली विस्फोटक इस्तेमाल होते हैं और कप्तान घायल हो जाता है।
जैसे यथार्थ को कल्पना में डालने की कोशिश का प्रतीकात्मक दंड मिला हो उसे।
कुछ ऐसा ही। ये एक तरह से मेटाफिक्शन भी है। कहानी खुद कहानी कहने की प्रक्रिया पर टिप्पणी कर रही है।
बिल्कुल, मेटाफिक्शन जब कहानी खुद के कहानी होने के बारे में जागरूक हो।
खैर, घायल होने के बाद वो वापस लॉस एंजेलिस आता है।
हाँ,
और अब कहानी और भी स्याह होती जाती है। भाग चार, खून और विश्वासघात।
कैसे?
शक होता है कि उसके संगठन में कोई भेदिया है, और वो कप्तान को ही काम सौंपता है कि उस जासूस को ढूंढो और खत्म करो।
अरे, ये तो फंस गया।
हाँ, वो एक क्रैपुलेंट मेजर की पहचान करता है, लेकिन अब उसके अपने हैंडलर मान से आदेश आता है कि वो मेजर को खत्म कर दे।
क्यों मान क्यों जाता है ये?
ताकि जनरल का विश्वास कप्तान पर बना रहे, वफादारी साबित हो।
ये तो भयानक नैतिक कश्मकश है। अपनी जान बचाने और मिशन जारी रखने के लिए उसे एक हत्या करनी होगी।
हाँ, और इसके लिए वो फिर से अपने दोस्त बॉन का इस्तेमाल करता है।
बॉन, वो जो पत्नी और बच्चे की मौत के बाद से।
जी, बॉन तो गुस्से और बदले की आग में जली रहा था। वो आसानी से मेजर की हत्या के लिए तैयार हो जाता है।
और हत्या हो जाती है।
हाँ, और बहुत क्रूर तरीके से होती है। इस घटना के बाद कप्तान सिर्फ एक दर्शक या जासूस नहीं रहता,
वो अब सीधे तौर पर हिंसा में शामिल हो गया है। उसका नैतिक पतन।
बिल्कुल, उसके अंदर का द्वंद अब असहनीय हो चुका है।
यही हम देखते हैं कि कैसे कैसे विचारधारा और युद्ध की स्थितियां इंसान को नैतिक रूप से तोड़ मरोड़ सकती हैं। क्रांति के नाम पर शुरू किया था, और अब हत्या की साजिश, अपने ही दोस्त का इस्तेमाल।
क्या लक्ष्य साधनों को सही ठहरा सकता है? उपन्यास ये सवाल बार बार उठाता है।
फिर आता है भाग पांच, विनाशकारी वापसी।
जी, जनरल की वो प्रतिक्रांतिकारी सेना तैयार है, और मान कप्तान को आदेश देता है कि वो इस सेना में शामिल होकर अंदर से इसे तोड़े।
ओह, तो कप्तान बॉन के साथ इस मिशन पर जाता है।
हाँ, थाईलैंड और फिर वियतनाम, ये जानते हुए कि एक आत्मघाती मिशन है, उसी क्रांति द्वारा बिछाया गया जाल जिसकी वो सेवा करता आया है।
ये पूरी कवायद ही कितनी हताशा और व्यर्थता का प्रतीक है। इतिहास को पीछे मोड़ने की कोशिश, निर्वासन और हार की हताश मानसिकता।
बिल्कुल, और जैसा अनुमान था, वियतनाम पहुंचते ही उनकी छोटी सी टुकड़ी पर घात लगाकर हमला होता है, सब खत्म, विनाश।
बॉन?
बॉन बहादुरी से लड़ता है, पर आखिर में कप्तान और बॉन दोनों पकड़ लिए जाते हैं, जैसा उपन्यास में है। तो इस तरह हम शिविर में पहुंचे।
और अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां से वो शुरू हुई थी, भाग छह, री एजुकेशन कैंप और स्वीकारोक्ति।
जी, कप्तान को उस क्रूर शिविर में ले जाया जाता है। भयानक मानसिक और शारीरिक अत्याचार होते हैं,
और उसे वो कबूलनामा लिखने को कहा जाता है जो हम उपन्यास के रूप में पढ़ रहे हैं।
हाँ, और फिर आता है सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला, सबसे भयानक मोड़।
क्या?
कौन है वहां? कैंप का कमांडर और जो मुख्य पूछताछ करने वाला अफसर है वो कोई और नहीं, मान निकलता है।
क्या? मान? उसका बचपन का दोस्त, गुरु, हैंडलर?
हाँ वही।
ये तो कल्पना से भी परे हैं, अविश्वसनीय। क्यों मान ऐसा क्यों करता है?
मान का तर्क है कि कप्तान पश्चिम के प्रभाव से और अपने उस दो मन वाले स्वभाव से भ्रष्ट हो गया है।
तो ये यातना उसे शुद्ध करने और एक सच्चा क्रांतिकारी बनाने के लिए जरूरी है।
हाँ,
मान
क्रांति का वो भयानक सच सामने रखता है। व्यक्ति कुछ भी नहीं है, सामूहिक इच्छा ही सब कुछ है। स्वतंत्रता, व्यक्ति की पहचान, इन सब का क्रांति के सामने कोई मोल नहीं। ये सब शून्य है, नथिंग।
ओह, ये विचारधारा की विफलता का चरम है। कैसे ऊंचे आदर्श भी ऐसी क्रूरता का बहाना बन सकते हैं? क्रांति अपने बच्चों को खा जाती है वाली बात।
बिल्कुल। मान का ये विश्वासघात कप्तान के अंदर जो भी थोड़ा बहुत विश्वास बचा था उसे भी पूरी तरह तोड़ देता है।
और यहीं हमें ये भी याद रखना होगा कि कप्तान एक अविश्वसनीय कथावाचक है। मतलब हम जो कहानी पढ़ रहे हैं वो उसके नजरिए से है, और ये नजरिया यातना के तहत बना है।
जी हाँ, तो क्या हम उसकी हर बात पर यकीन कर सकते हैं? ये सवाल भी उपन्यास अपने पीछे छोड़ जाता है।
इस भयानक अनुभव के बाद कप्तान तो पूरी तरह टूट जाता है, अपनी पहचान खो देता है।
हाँ, आईने में अपनी शक्ल देखकर वो चीख पड़ता है, उसका कबूलनामा पूरा होता है और फिर बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से उसे और बॉन को रिहा कर दिया जाता है।
रिहा? कहाँ भेजा जाता है उन्हें?
उन्हें एक छोटी सी नाव में बिठाकर दक्षिण चीन सागर में छोड़ दिया जाता है।
यानी फिर से शरणार्थी?
हाँ, जहां से चले थे एक तरह से वहीं पहुंच गए। एक चक्र पूरा हुआ पर मंजिल अभी भी गायब है।
उपसंहार, हम जिएंगे।
हाँ, नाव पर और भी सताए हुए लोग हैं। उनकी चीखें सुनकर कप्तान आखिर में कहता है, हम जिएंगे।
ये कोई जीत का नारा नहीं लगता, बल्कि सब कुछ खो देने के बाद उस भयानक निराशा और अर्थहीनता के सामने बस जिंदा रहने की एक हताश जिद लगती है।
बिल्कुल।
तो ये थी दी सिंपथाइजर की जटिल परतदार कहानी। अगर हम इसके मुख्य विषयों को समेटना चाहें तो सबसे पहले तो पहचान का सवाल है, नायक का दो मन होना।
जी, ये दिखाता है कि पहचान कितनी तरल, कितनी विरोधाभासी हो सकती है, खासकर जब आप दो संस्कृतियों, दो विचारधाराओं के बीच फंसे हों। एक बाहरी व्यक्ति होना।
दूसरा, स्मृति और कथा की राजनीति। वियतनाम युद्ध की कहानी कौन सुनाता है और कैसे सुनाता है? ये उपन्यास अमरीकी आधिपत्य को चुनौती देता है
और वियतनामी दृष्टिकोण पर जोर देता है। उन आवाजों को सामने लाता है जिन्हें दबा दिया गया था।
तीसरा, विचारधाराओं की विफलता, चाहे वो अमेरिका का पूंजीवाद हो या वियतनाम का साम्यवाद, दोनों ही अंततः अमानवीयता का पर्दाफाश करते हैं।
जी, दोनों ही व्यक्ति को अपने बड़े लक्ष्यों के लिए कुचलने को तैयार नजर आते हैं।
चौथा, विश्वासघात और वफादारी का वो जटिल जाल। राजनीतिक निष्ठाएं बदलती रहती हैं, लेकिन क्या व्यक्तिगत रिश्ते ज्यादा मायने रखते हैं?
हाँ, बॉन और कप्तान की दोस्ती तमाम विश्वासघातों के बावजूद अंत तक किसी न किसी रूप में टिकी रहती है, जो बहुत कुछ कहती है।
और फिर वो ओरिएंटलिज्म और पश्चिमी नजरिए की आलोचना, कि पश्चिम कैसे पूर्व को गलत समझता और प्रस्तुत करता है।
हाँ, कथा शैली भी बहुत महत्वपूर्ण है। अविश्वसनीय कथावाचक, काला हास्य, व्यंग्य, प्रतीकवाद, ये सब मिलकर कहानी को और गहरा बनाते हैं।
ये कहानी हमें सिखाती है कि युद्ध और विचारधारा व्यक्तिगत जीवन और मानवीय संबंधों को कैसे तोड़ मरोड़ देते हैं।
और ये आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि ये पहचान, विस्थापन और इतिहास को कौन लिखता है, इस पर गहरे सवाल उठाती है। ये सवाल आज भी उतने ही जरूरी हैं।
अनिवार्य क्लोजिंग लाइन।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।